नमस्कार सुतो, छिंदवाड़ा उबलेन से आपका दोस्त योगेश। जिस तरीके से पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और वर्तमान में सरकार ने 18 प्लस के युवाओं को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया आने वाली है, इसको लेकर लोगों द्वारा कई समस्याएं सामने आ रही है। खासकर वैक्सीनेशन के पंजीयन हो या फिर कोविड सेंटर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, इसके लिए कई लोगों ने यह मांग की है कि कोविड सेंटर बनाया जाए ताकि सेंटर पर कोरोना का गाइडलाइन का पालन हो सके। आज हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता एवं यूथ ऑफ सौसर के सदस्य अक्षय जी बंसोड़ जुड़े हुए। अक्षय जी, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
जी धन्यवाद सर आपका।
सर, जिस तरीके से बीते दिनों कई लोगों की मांग थी कि आयुष्मान कार्ड निजी अस्पतालों में यूज हो इस महामारी को लेकर, और मोबाइल वाले ने इसको लेकर लोगों की राय भी रखी थी, सर किस तरीके से देख रहे हैं आयुष्मान कार्ड को अब निजी अस्पतालों में यूज होगा और कई वर्ग के लोगों को इसका फायदा होगा?
जी सर, ये जो सर आयुष्मान कार्ड का जो कॉन्सेप्ट अभी सर सरकार ने जो लेके आया है, वो एक हिसाब से जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ये बहुत पहले जो है वो निजी अस्पतालों के लिए, प्राइवेट अस्पतालों को जो है वो बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग अभी देखते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी में जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करते हैं या जो गरीब वर्ग का परिवार है इनकी बात करते हैं, तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी अगर जो है वो अस्पताल में जाता है तो कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा जो है कम से कम जो है उसको करना पड़ता है। और एक मिडिल क्लास आदमी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कम से कम 2 साल 3 साल या 4 साल की बाद में जितनी उसकी सेविंग होती है शायद ही जो है वो 2 से 3 लाख रुपए की सेविंग कर पाता होगा। तो सरकार ने ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, पर खैर देर आए दुरुस्त आए, सरकार की ये पहल जो है वो बहुत अच्छी पहल है, सार्थक पहल है।
सर, जो 18 प्लस के युवाओं को अब वैक्सीनेशन लगने वाली है सर, तो लेकिन लोगों की कई मांग है कि वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाया जाए ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके, सर किस तरीके से देख रहे हैं इसको?
जी, वैक्सीनेशन तो सर बहुत जरूरी है अभी की कंडीशन में, क्योंकि जिस तरह से विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, तो उसको देखते हुए सरकार ने भी जो है बहुत अच्छी तैयारी करके रखी है कि वैक्सीनेशन जो है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। बस सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर हमारे यहाँ पे अभी वैक्सीन का स्टॉक जो है वो बराबर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कुछ भ्रामक जानकारियां भी जो है वो लोगों के बीच में आ रही है, तो सरकार ने जो है इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो भ्रामक जानकारियां जो समाज के बीच में फैल रही है वो भ्रामक जानकारियां सबसे पहली बात तो ना फैले, और दूसरी बात जैसे कि हमारे बीच में हम लोग देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग अभी सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वैसे अभी तक के जो है हमारे जो आसपास का जो क्षेत्र है वहां देखने को मिला है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे तो उतना भीड़ नहीं होती है जितनी होना चाहिए, और एक अवेयरनेस जनता के बीच में होना चाहिए, वो अवेयरनेस भी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। पर सरकार ने जो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर जो भ्रामक जानकारी है वो भ्रामक जानकारियों पे थोड़ा नियंत्रण हो पाए, और एक वैक्सीनेशन के लिए जो स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि आने वाली जो तीसरी लहर है उसके लिए कह रहे हैं हम लोग कि जब तक की जो है तीसरी लहर जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है, तो उसके लिए जो अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग वैक्सीनेशन करें, ये सरकार ने इसका थोड़ा ध्यान रखे और वैक्सीन की मात्रा को बढ़ाना चाहिए।
सर, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर भ्रामक जानकारी है, साथ ही कई युवाओं की यह भी राय है कि वैक्सीन के पंजीयन को लेकर उन्हें बहुत समस्या आ रही है, सर क्या कहना चाहिए इसको लेकर?
जी सर, ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन की अगर बात है तो यहाँ पे वैक्सीनेशन में 45 साल से ऊपर के जो लोग थे उनमें जो है अधिक भ्रामकता देखने को मिली है, पर अभी जो एक नया स्लॉट चालू कर रहा है या 18 साल से ऊपर वालों का, तो जहां तक कि मैंने देखा है 18 साल के ऊपर के जो युवा है उनमें जो है वैक्सीनेशन के लिए बहुत अधिक उत्साह है, तो ग्रामीण क्षेत्र में सर मुझे ऐसा लगता है कि यह जो जिम्मेदारी हमने दी गई है अभी तक के तो यही देखने को मिला है कि ये पूरी जिम्मेदारी जो है केवल प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिली है, यही प्रशासनिक अधिकारी ही यहाँ पे देखने को मिलते हैं हम लोग कि हाँ वो जाके क्या करते हैं उसको जो है प्रेरित करते कि आप वैक्सीनेशन करवाइए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासनिक स्तर से लेकर ज्यादा वहाँ के जो सामुदायिक लोग होते हैं, जो समाज के जो है प्रबुद्ध वर्ग है, समाज का जो है जो सुनने वाला वर्ग है, जो बड़े व्यक्ति है जिसकी जो है पूरा का पूरा समाज सुनता है, तो इनको जो है सबसे पहले तो हमको जो है समझाना पड़ेगा कि आप जो है वो जनता से अपील कीजिए, आप अपने अपने समाज में अपील कीजिए, आप उनके सामने रोल मॉडल बनी है ताकि आपको देखते हुए बाकी लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित हो। और मुझे लगता है कि सर ग्रामीण क्षेत्र में जो है ये बहुत कारगर होगा कि हमारे ही बीच का व्यक्ति अगर कोई है, हमारे बीच के ही व्यक्ति को अगर प्रेरित करें, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में भ्रामकता फैली हुई है कि वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए या वैक्सीन कुछ नहीं कर रही है, तो इससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है हम निजात पा सकते हैं और वैक्सीनेशन को बढ़ा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है।
जी सर, जिस तरीके से कोरोना काल में करीबन कोरोना कर्फ्यू करीबन 2 से 2.5 माह से लगा हुआ है, लेकिन
जी
कई लोगों को अभी भी राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और राशन में कई गड़बड़ियां सामने आ रही है, तो सर ये प्रशासन ने किस तरीके के कदम उठाए जाए ताकि गरीब वर्ग के लोगों को राशन मिल सके?
जी सर, अभी तो सर ये राशन की जो समस्या है वो तो पिछले वाले लॉकडाउन में भी जो हुआ था ना, पिछले वाला जो बड़ा लॉकडाउन हुआ था उसमें भी ये समस्या देखने को मिली थी, और अभी जो 2 महीने का 2.5 महीने का एक टाइम पीरियड निकला है उसमें भी जो है ये समस्या जो है देखने के लिए मिली है, खासकर के ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर POS मशीन से जो है, POS मशीन से जो है राशन का वितरण नहीं हो रहा है, तो रजिस्टर के माध्यम से राशन का वितरण हो रहा है, तो सेल्समैन की इसमें जो है कालाबाजारी करने की जो है बढ़ जाती है। सेल्समैन चाहे तो उसमें जो है किसी के नाम से भी जो है उसको बढ़ा सकता है, तो इसके लिए सर सोशल ऑडिटिंग मेरे हिसाब से तो जरूरी है कि जो उस गांव के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उस गांव के जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, वो लोग जो है वो सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से जो है उस पर नियंत्रण करें, और ग्राम के जो है वो सरपंच हो गए, सचिव हो गए, तो उनमें जो है इसकी जिम्मेदारी करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश की सरकार जो है 3 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है, केंद्र की सरकार जो है 2 महीने का राशन मुफ्त में दे रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 2 बार या 3 बार ऐसी बुनियादी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 बार जो ऐसी बुनियादी करना चाहिए कि आपको जो है प्रति परिवार जो है 5 किलो के हिसाब से जो है आपको अनाज दिया जाएगा। आपको 3 महीने का अनाज मिलेगा तो प्रति परिवार जो है उसके हिसाब से आपको अनाज मिलेगा, या इस तरह से मुनवादी करके जो है व्यक्ति को जो है कितना अनाज मिलने वाला है उसकी अगर उसे प्रॉपरली जानकारी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि जो है राशन की जो है कालाबाजारी जो है वो हो सकती है।
जी
और अगर किसी भी तरह की राशन की कालाबाजारी होती है तो तुरंत जो है हमारे खाद्य अधिकारी है या SDM सर है या तहसीलदार सर है, इनने जो है तुरंत जो है एक्शन लेके जो है वो काम करना चाहिए।
जी सर, बीते कई दिनों पहले वर्तमान में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मोबाइल वाणी ने जिले के जो ब्लॉकों में कोविड सेंटर बनाने की मांग रखी थी, सर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे जिले के ब्लॉकों के हॉस्पिटल हॉस्पिटल को लेकर?
जी सर, समस्या तो जो है बहुत विकट हो गई थी, क्योंकि सर जिस तरह से जो है वो वैज्ञानिकों ने जो है दूसरी लहर आने के पहले जो चेतावनी दी थी, और हम लोगों ने गलती तो हम लोगों की थी कि हम लोगों ने जो है उसको उतना ध्यान पूर्वक नहीं लिया, या हम लोगों ने खुद ने जो है हम ये बोल सकते कि एक तरह से मास्क लगाना ही बंद कर दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग भूल चुके थे, तो कुछ ना कुछ समस्या तो हमारी तरफ से भी थी, कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से रही होगी, हो सकता है कहीं ना कहीं कमियां जो है वो रही होगी, पर सर स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें आज से कम 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले अगर देखते तो समस्या विकराल थी, समस्या उस समय जो है विकट हो चुकी थी, ना हमारे पास में ऑक्सीजन था, ना हमारे पास में बेड थे, ना हमारे पास में उस समय कोई दवाई थी, तो हमारे पास में उस समय संसाधन कुछ नहीं थे, पर आपने हमने और भी समाज के दूसरे संगठनों ने और लोगों ने जो मिलकर एक प्रयास किया है, विशेष करके छिंदवाड़ा जो जिला है, छिंदवाड़ा जिले के लिए जिस तरह से हमने विकास किया है कोविड सेंटर बनाने के लिए या रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए, तो यह एक बहुत ही हमारे यहाँ के लोगों की एक एक्टिवनेस बोल सकते, बहुत अच्छा प्रयास बोल सकते कि आज हमारे यहाँ छिंदवा हमारे यहाँ जो है वो बोरगांव में जो है एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, बोरिया में जो है वो एक ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, साथ ही साथ जो है अगर मैं सौसर सिविल हॉस्पिटल की बात करूँ तो 100 से 110 सिलेंडर जो है यहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है यहाँ पे, साथ ही साथ हमारा जो यूथ ऑफ सौसर बहुत अच्छा जो है काम कर रहा है, खुद उनके पास में 4 से 5 ऑक्सीजन के सिलेंडर है, और भी जो अन्य सामाजिक संगठन है उनके पास में यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड ऑक्सीजन के सिलेंडर है, तो अभी वर्तमान कंडीशन की अगर बात करें सर तो सौसर क्षेत्र में या छिंदवाड़ा की जो बात करें हम लोग तो बहुत हद तक के जो है हमने कोरोना को नियंत्रित करने की जो है वो कोशिश की है और हम लोग उसमें सफल भी रहे हैं।
सर कई ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना काल में शिक्षा का अभाव रहा है, सर उन लोगों
जी
को गाइडलाइन देना चाहेंगे कि वे अब इस माहौल में किस तरह पढ़ाई करें?
जी सर, देखिए सर, पिछले 1 साल या 1.5 साल की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हमने कहीं नुकसान अगर हुआ है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो, चाहे वो कॉलेज की शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, कोचिंग क्लासेस हो, तो यहाँ पे जो 1 से 1.5 साल का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी वर्तमान में हम लोग जो है इसको जो है ऑनलाइन जो है ऑनलाइन प्रोसेस की ओर जा रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस की भी जो है ऑनलाइन क्लासेस की भी जो है कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। ठीक है, बच्चों में एडिक्शन जो है मोबाइल का ज्यादा बढ़ गया है, चिड़चिड़ापन जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। पर सबसे बड़ी चीज तो अभी सर ये देख सकते हैं हम लोग कि अभी खुद को जो है वो एक एक तरह से मैनेज करना है या खुद को जो है वो संभालना है। तो सबसे पहले तो सर एक दिनचर्या जो होती है वो एक अच्छी दिनचर्या होना चाहिए, सुबह उठ के व्यायाम वगैरह होना चाहिए, स्ट्रेस से मुक्त होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अभी समय जो है हमारे पास में अच्छा है, क्योंकि अभी हमें ना कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ना ही हमें जो है कोई दूसरे काम करना पड़ रहा है। तो जो चीजें हमारी जो है वीकनेस वाली है तो उसके ऊपर में हम फोकस कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है हो सकती है, अभी ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, नहीं भी अगर जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है कुछ तो यूट्यूब पे जो है बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम ये नहीं बोल सकते कि सर पूरा जो है पूरा जीरो जो है पूरा जो है ब्लैंक हो चुका है। अगर उसका यूज करना चाहे तो ऑनलाइन जो है यूट्यूब के माध्यम से अभी भी हम लोग जो है शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, पर जो एक इफेक्टिवनेस जो क्लास में होती है वो इफेक्टिवनेस जो है क्लास से जो है थोड़ा सा जो है वो दूर है।
सर आपने कहा जिस तरीके से यूट्यूब के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा आप सीख सकते हैं, तो सर अभी 1 से 8 तक के बच्चे इनके बारे में नहीं पता, तो इनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे ताकि ये भी इस कोरोना काल में कुछ हद तक कुछ पढ़ाई कर सके?
जी सर, देखिए सर 1 से 8 तक की बात है तो यहाँ तक का जो स्तर होता है ना ये बौद्धिक विकास का स्तर होता है। पाठ्यक्रम तो ठीक है, पाठ्यक्रम में आपको जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम से जो है ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, पर 1 से लेकर 8 तक के या आप बोल सकते हैं कि 1 से 5 तक के बच्चे का जो होता है वो एक बौद्धिक विकास होना जरूरी होता है। तो यह जरूरी नहीं होता है कि बौद्धिक विकास जो है केवल स्कूल में ही जाके हो या टीचर के माध्यम से ही हो। तो आपको अगर बौद्धिक विकास अगर करना है तो आप जो है एक घरेलू ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं, घरेलू एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हो कि बच्चे का जो है बौद्धिक विकास वहाँ पे जो है वो हो सकता है। जैसे हम अगर बात करें तो हम जो है सुबह उठ के जो है योग करें, प्राणायाम करें, साथ ही साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, एक दिनचर्या जो है वो बना सकते हैं। स्कूल हमारे यहाँ पे जो है घरेलू पेरेंट्स जो होते हैं तो वो भी जो है इतने तो जो है वो इतने तो पढ़े लिखे होते हैं कि वो जो है एक बेसिक जो है शिक्षा होती है, एक मूलभूत जो शिक्षा होती है जो बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए जरूरी होती है वो घर पे जो है आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर माता पिता भी जो है थोड़े से भी जो है वो लिटरेट है, थोड़े से भी जो है पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल सर ये चीजों को जो है वो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो 1 से 8 तक के बच्चों को जो है अभी तो जो है सर जो बौद्धिक विकास है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी के ऊपर में फोकस किया है कि किस तरह से माध्यमिक स्तर पे बच्चों का जो है वो बौद्धिक विकास किया जाए, किस तरह से बच्चों में जो है अधिक से अधिक जो है वो रुचि लाई जाए या किस तरह से जो है उसे जो है वो नई नई चीजों को सिखाया जाए। तो इस तरह से घरेलू स्तर पे भी अभी जो है हम लोग जो है उन्हें बौद्धिक विकास के ऊपर और में ले जा सकते हैं।
जी सर, यूथ ऑफ साउथ सर वैक्सीनेशन के लिए हो, चाहे रक्तदान हो, ब्लड डोनेट हो, किस तरीके से काम कर रही है वैक्सीनेशन की जो जानकारी हो, चाहे रक्तदान हो या अन्य जो भी प्रयास किए जा रहे हैं यूथ ऑफ सर, किस उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे?
जी सर, सर यूथ ऑफ सर की अगर बात करें तो ये सर एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इसमें ऐसा नहीं कि जो है इसमें कुछ ही मेंबर है, इसमें तो हम पूरा एक परिवार के रूप में कार्य करते हैं, चाहे वो सौसर तहसील हो या पूरा का पूरा हम ये मान के चले कि पूरा छिंदवाड़ा जिला हो, तो हम इसमें सबको जो है एक परिवार के रूप में मानते हैं। और बीते कुछ दिनों से जैसे हम तो सर सबसे पहले जो है काम कर रहे थे एजुकेशन के ऊपर में कि किस तरह से बच्चे को जो है एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाए, एक परीक्षा का आयोजन करते अच्छे बड़े लेवल पे होती है। फिर उसके बाद में जैसे पिछला जो कोविड आया था, पिछला वाली जो पहली लहर आई थी, तो उस समय हमने ये महसूस किया था कि सिविल हॉस्पिटल में जो है वो ब्लड की कमी है और हमारे यहाँ पे इतनी अभी जागरूकता नहीं है कि हम लोग जो है वो स्वेच्छा से जाके जो है सिविल हॉस्पिटल में जो है ब्लड को डोनेट करें। तो ये समस्या हमने जो है वो हमारे शास्त्री साहब है सिविल हॉस्पिटल में, तो हमने उनके पास में रखी, उनके मार्गदर्शन में जो है हमने जो है सिविल हॉस्पिटल की सहायता से, छिंदवाड़ा की टीम जो है सिविल जिला अस्पताल उनकी सहायता से हमने जो है वो सौसर में एक शुरुआत की कि कम से कम 15 से 20 यूनिट प्रति माह जो है ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाए। और अभी तक हमने जो है सौसर में जो है ऐसे जो है 7 से 8 जो है प्रति महीना 7 या 8 7 8 महीने से हम लोग यहाँ पे सौसर में जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, और प्रतिमा जो है वो कम से कम 15 से 20 यूनिट जो है ब्लड जो है वो सिविल हॉस्पिटल सौसर को जो है दे रहे हैं, ताकि जो गर्भवती महिलाएं होती है अभी वर्तमान में कोविड के पेशेंट है या कोई एक्सीडेंट में अगर कोई गंभीर रूप से अगर पेशेंट जाता है तो उसे वहाँ पे जो है बिना किसी के जो है वहाँ पे बोले वहाँ पे जो है उनको ब्लड की आवश्यकता जो है पूरी की जाए। हाँ, और इन केस अगर कोई इमरजेंसी कॉल आता है तो हमारे पास में वॉलेंटियर्स की टीम होती है, साथ ही साथ जो हमारे पास में पूरी एक लिस्ट होती है कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसने ब्लड डोनेशन कब किया था और ब्लड डोनेशन करने की इच्छा रखता है क्या, तो इस तरह से एक पूरी जो है हमारे पास में एक डेटा होता है। और इन केस अगर कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी में आ जाए जैसे ब्लड की आवश्यकता होती, जैसे इसी मंथ में जो है 2 या 3 ऐसे इमरजेंसी के कॉल हमारे पास में आए थे, तो हमने तुरंत जो है वो सिविल हॉस्पिटल सौसर में जाके ब्लड की जो है व्यवस्था करवाई है। और यूथ ऑफ सौसर केवल स्थानीय स्तर पर ही ब्लड की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, इसके पहले हमने छिंदवाड़ा में जो है यहाँ पे हमारे यहाँ सौसर से जो छिंदवाड़ा पेशेंट गए उनके लिए, यहाँ तक कि भोपाल और नागपुर के पेशेंट को भी यहाँ से जो है हमने जो है यहाँ से ब्लड को जो है वो अरेंज करवा के दिया है। तो यूथ ऑफ सौसर जो है सर एक चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो केवल ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं, जिस तरह से अभी वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो सभी के लिए जो है एक महामारी के रूप में जो है वो आई है, तो इसको बचना है, कोरोना महामारी से अगर बचना है, तीसरी लहर से अगर बचना है, तो अधिक से अधिक जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर में जो है हमको ध्यान देना होगा। तो यूथ ऑफ सौसर जो है सौसर और उसके अन्य क्षेत्र में जहाँ पे भी है जितने भी वॉलेंटियर्स हैं ये सभी के सभी जो है प्रयासरत रहते हैं कि किस तरह से अधिक जो है वो वैक्सीनेशन के लोगों को प्रेरित किया जा सके। तो इस तरह से सर अभी तक के जो है यूथ ऑफ सौसर की भूमिका रही है।
जी, तो ये थे अक्षय जी बंसोर जिन्होंने मोबाइल वाणी पर चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे राशन वितरण में गड़बड़ी हो, चाहे वर्तमान में कोरोना संक्रमण अपने क्षेत्र में किस तरह हो, इसको लेकर मोबाइल वाणी पर जानकारी साझा की। अक्षय जी, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जी धन्यवाद सर, आपकी पूरी टीम का और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वालेंस से आपका दोस्त योगेश।